नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
The significance is immense.
भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
Greater economic engagement between these two large countries.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
देने देने तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
दोनों जने मिल के सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमरीका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रूपये की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।